ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागतम श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 38। 38 से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यो अंत प्रविश्य भूतानि भूतयति अखिलाश्रया स विष्णु आख्य अधियज्ञ। असो काल कलयतां प्रभु। अनुवाद कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। कृपया दोहराइए। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार करने का कारण है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता है और अन्य जीव और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:14 में कहा गया है, एकल ईश्वर कृष्ण विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं, आर सब भृत्य, अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता हैं। यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का सहार करते हैं। इंग्लिश में लिखा है ब्रह्मा शिव एंड अदर डेमिगॉड्स आल्सो, वो भी उनके दास हैं। यहां पे थोड़ा सा विराम दे दिया। एकल ईश्वर कृष्णा विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं और सब भृत्य, अन्य सब उनके दास हैं। तो यहां विराम देके लिखा है ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता हैं। इंग्लिश में लिखा ब्रह्मा शिव भी उनके सेवक हैं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो इंग्लिश में लिखा था उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का सहार करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 38 अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। तो ये अध्याय के जो शुरुआत है, अध्याय का आरंभ है, वो माता देवहूति के द्वारा प्रश्नों से शुरू होता है। माता देवहूति ने श्लोक संख्या एक से लेकर पांच तक अलग अलग प्रश्न पूछे। विशेषतः भगवान जब श्लोक संख्या पांच में माता देवहूति ने कहा कि मैं यह प्रश्न अपने लिए नहीं और जीवों के भी उद्धार के लिए या उनके भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूछ रही, तो कपिल देव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो जब कोई भी जीव, वैसे तो भगवान श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान सब जीवों के प्रति सचेत रहते हैं या उनको ये चिंता रहती है कि वे भगवत धाम जल्दी से जल्दी कैसे आए। लेकिन जब कोई जीव भी ये चिंता करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, विशेषकर उस भक्त के प्रति या उस जीव के प्रति। तो देखिए, यही जो एक भगवान कपिल देव का जो इंग्लिश में मूड कह लीजिए या उनका अंतरंगी जो अंतरंगा कहता है कि जो उन्हें बहुत पसंद आता है, जो प्रसन्न करता है इवन भगवान को भी, वही बिल्कुल वैसा ही व्यवहार और मूड श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अपने जीवन में करके दिखाया। हमें वैसा ही व्यवहार या वैसा ही मूड या वैसा ही चेतना बना के रखने कोशिश करनी चाहिए कि हमें वैसे ही चेतना बना के रखें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जीवों को भगवान कृष्ण के समीप लाने का प्रयास कर सके। तो उसके बाद अगले श्लोकों में भगवान कपिल देव के द्वारा अलग अलग भक्ति की जो अलग अलग गुणों में कैसे भक्ति होती है वो बताया। विशेषकर उसने बताया कि जब भक्त अगर किसी से ईर्ष्या कर रहा है, सिर्फ भक्त से ही नहीं, अगर आम व्यक्ति से या जीव के प्रति से अभी भी ईर्ष्या है तो उसकी भक्ति रजोगुण और तमोगुण में है। और उसमें यह भी बताया अगर वो अर्च विग्रह की उपासना में लगा हुआ है, अर्च विग्रह की उपासना भी कर रहा है, तो भी उसकी जो भक्ति है भगवान या उसकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। तो कितना महत्व दे रहे हैं भगवान कपिल देव कि एक भक्त को दूसरे जीव में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए और उसका भी सम्मान करना चाहिए। देखिए, एक भक्ति के एक बाह्य रूप होता है, भक्ति का एक अंतरंगा रूप होता है। बाह्य रूप से हम तिलक लगाएं, कंठी माला भी पहन ले और यहां तक कि अर्च विग्रह की पूजा में भी लग जाएं, बाह्य दृष्टि से हम बहुत अच्छे भक्त दिखेंगे, लेकिन भक्ति अंतर्मुखी है, अंदर से हमारी जो स्वच्छता होनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत जरूरी है, जिसे भगवान कपिल देव स्वयं बता रहे हैं। इसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उसमें समझा रहे हैं कि कैसे भक्त को सारे जीवों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद भगवान कपिल देव जी श्लोक 15 से लेकर 20 तक समझा रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है। उसमें फिर वो अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान लगाने के बता रहे कि अच्छे विग्रह के कैसे चरणों पर ध्यान करना चाहिए और फिर कैसे जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की कथा सुनने में उसकी बहुत रुचि होती है और वो कैसे प्रचार करने में लगा रहता है, जिससे भगवान कपिल देव ने पहले ही बताया कि वो बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रचार करने में कैसे लगा रहता है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उनके तात्पर्य में कि कैसे गुरु की आज्ञा को अपना जीवन बनाना चाहिए हर एक भक्त को। कोई भाग्यशाली भक्त जब परंपरा से गुरु को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से गुरु को प्राप्त करता है, तो कैसे उसके वचनों को अपना जीवन बना लेना चाहिए उसे। फिर दोबारा से प्रभुपाद जी ने हमें अपने जीवन में दिखाया कि कैसे उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो वो पहली बार मिले थे, पहली बार के वचनों को ही अपना जीवन बना लिया, चाहे वो किसी भी आश्रम में थे, लेकिन हमेशा उनका मन इसी या उनकी शक्ति तन मन धन से कहते हैं ना, जैसे तन मन धन से उसी आज्ञा को पूरा करने में लगे हुए थे। बैक टू गॉड हेड छापते थे, उसे दिल्ली में जाते थे अकेले, बहुत खुद प्रचार करते थे। और आप सबको पता है किस तरह से वो एक बार कितनी गर्मी में उन्हें चक्कर आ गए थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सनस्ट्रोक। हम सब तो उत्तर भारत के हैं तो हमें ये बहुत बात अच्छे से समझ में आती होगी ना, सनस्ट्रोक जब होता है तो क्या हाल होता है व्यक्ति का। तो प्रभुपाद जी इस हद तक गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त तय करैया, इस बात को जीवन में कैसे उतारते हैं। हिज होलीनेस प्रबोधानंद महाराज जब इस यहां तक एक बार प्रवचन कर रहे थे तो वो इसी बात पे कितना जोर दे रहे थे, कहते हम रोज गाते हैं ये प्रार्थना, रोज फ्लावर भी ऑफ फूल भी भगवान प्रभुपाद जी को अर्पित करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो करके दिखाया उसको जीवन में उतारने का प्रयास पूरी शक्ति से नहीं होता, तो हमें प्रयास करना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण भगवान कपिलदेव बता रहे हैं। उसके बाद ऐसा क्यों बता रहे हैं कपिलदेव, अभी आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर आगे भगवान कपिलदेव श्लोक संख्या 20 से लेकर 25 तक लगभग जो मैंने अभी आपको बताया कि भगवान उसको उस भक्त की सेवा को स्वीकार नहीं करते और उस और उसके रिजल्ट बताते हैं, उसके बताते हैं कि उसके मन में कभी शांति नहीं आएगी। महामंत्र का जब भी कर रहा है व्यक्ति, अर्चय विग्रह की पूजा में भी लगा हुआ है तो उस, लेकिन उसको मन में जो शांति होती है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, ये स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। इसलिए कई बार होता है भक्त कई कई साल सेवा में लगे रहते हैं, उसके बावजूद उनमें भौतिक इच्छाएं होती हैं कि मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो प्राप्त कर लूं। क्यों? क्योंकि मन में अभी भगवान के प्रति पूरा समर्पण नहीं आया, मन में अभी वो शांति नहीं आई। मुक्ति मुक्ति क्या श्लोक है वो चैतन्य चरितामृत का? हाँ माता जी, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, सकल सारे, इसका मतलब मन शांत नहीं हुआ तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि की भी इच्छा है, सकल अशांत, शांति नहीं आएगी। क्यों क्यों ऐसा नहीं होगा? जब तक कि वो दूसरे जीवों का सम्मान नहीं करेगा। तृणादपि सुनी चेना तरु रवि सही सुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को जीवन में नहीं उतारेगा तब तक मन में शांति नहीं आएगी। यहां तक कि वो अर्च विग्रह की पूजा में भी लगा हुआ है। अर्च विग्रह की पूजा करना कोई साधारण बात नहीं है, आपको पहले फर्स्ट इनिशिएशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद अब तो इस हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में वो पेपर हो गया, आपको कम से कम 100 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, उसके बाद एक साल बाद फिर गुरु महाराज देखेंगे, उसके बाद दीक्षा मिलती है। प्रभुपाद जी ने पहले तो बहुत प्रचार के कारण काफी लोगों को दूसरी दीक्षा दी, इसका मतलब ये नहीं प्रभुपाद जी जानते नहीं थे, जानते थे, लेकिन प्रचार ज्यादा मुख्य कार्य था। तो जो अर्च विग्रह की पूजा में भी लगा हुआ है उसके मन में भी शांति नहीं आएगी, और उसे भगवान उसको एक श्लोक में तो मूर्ख बता रहे हैं, मूर्ख है वो समझ नहीं रहा इस बात को कि बुद्धि में ये बात नहीं आ रही कि सब जीवों में परमात्मा है। और श्लोक संख्या 27 में तो भगवान कपिलदेव बोल रहे हैं कि हमें उपहार देना चाहिए, जो रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कि हमें उपहार देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। जब तक हम भक्त समाज में ऐसा व्यवहार नहीं होगा, कम से कम भक्त समाज में, तब तक जैसे प्रभुपाद जी कहते थे हमारे मंदिर वैकुंठ है, वैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा नहीं है, तब तक हमारा प्रचार भी अगर होगा तो भारत का जो व्यक्ति है जिसको हम प्रचार करने आता है वो कैसे आकर्षित होगा? अगर आकर्षित हो भी गया तो कई बार होता भक्त छोड़ के चला जाता है। तो एक बार हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से चर्चा कर रहे थे इस बारे में, लगभग 7-8 साल पहले की बात है, जब काफी भक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ को छोड़ के जा रहे थे, तो हमने पूछा महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए जो लोग लेके जा रहे हैं भक्तों को। इस गोपाल कृष्ण महाराज जी ने सिंपल, बिल्कुल सिंपल और कहते हैं सब लाइन, जैसे कहते हैं ना हरे कृष्ण जप सिंपल है और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है, तो उन्होंने इसी तरह से बड़ा साधारण सा और सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर दिया, उत्तर दिया। उन्होंने कहा जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भक्त हैं, वो वैष्णव हैं, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, कमी हमारे में है, क्योंकि हम भक्तों का अच्छा से देखभाल नहीं कर पा रहे, हम उन्हें अच्छे से उनके प्रेम नहीं दे पा रहे, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। बस ये जो सिद्धांत है, देखिए ये सिद्धांत कहां का हर जगह हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। भक्तों के अगर कोई कमी है तो उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा, उन्हें टॉलरेट करना पड़ेगा, जैसे प्रभुपाद जी करते थे, अभी भी आचार्य लोग हैं टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, तो हमें भी वही जीवन में उतारना पड़ेगा, देखते हुए कि परमात्मा रूप में भगवान उनके हृदय में भी हैं, और वो तो भगवान की तरफ मुड़ भी गया, वो सन्मुख हो गया भगवान की तरफ, जप करने लगा है, और इसी चेतना को पूरे जब हम प्रचार करने जाते हैं ये चेतना के साथ प्रचार करना चाहिए कि ये जीव भगवान का अंश है, इसको किसी ना किसी तरह भगवान की तरफ सन्मुख करना है, कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना है, तब भगवान कपिलदेव कहते बहुत प्रसन्न होते हैं। एक्सटर्नली ठीक है, एक्सटर्नल बहुत जरूरी भी है, जैसे कि जब हम एग्जाम्पल देते तो कुछ भक्त लोग उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति पुलिस वाला होता है या पुलिस की नौकरी करता है तो वो पहले अपने आप को ड्रेस करता है ना, पुलिस की ये बनाएगा, अपनी टोपी देखेगा, बैट देखेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि ये उसको याद दिलाने के लिए भाई तुम पुलिस वाले हो। खैर अभी तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, पुलिस वाले ड्रेस पहन के कुछ और करते हैं, तो वैसा व्यवहार हमने नहीं करना। एक्सटर्नली बहुत जरूरी है, तिलक हमें लगाना है याद दिलाने के लिए कि हम ओम केशवाय नमः, हम भगवान केशव के दास हैं, केशवों के दास के दास के दास हैं, इस ये जो शरीर है ये भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है। एक्सटर्नल जरूरी है, लेकिन एक्सटर्नल या बाह्य रूप में ही भक्त बने नहीं रहना, अंतर्मुखी भी होना है, देखना है कि परमात्मा सब जीव में है। उसके बाद श्लोक 28 से लेकर लगभग 32 तक भगवान ने अलग अलग जीवों की अवस्था बताई है कि कैसे पेड़ों की क्या अवस्था है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, पेड़ों से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, फिर उससे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस तरह से अलग अलग जीवों की अवस्था बताई है। क्यों बता रहे हैं, वही उसी सिद्धांत को दोबारा बताने के लिए कि हर एक जीव का सम्मान करना है, अगर वृक्ष भी है उसका भी सम्मान करना है, और जो जीव मान लीजिए सांस ले रहे हैं या बोल सकते हैं या कुछ अपना व्यवहार या अपने आप को प्रकट कर सकते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या। देखिए अगर हम कृष्ण भावना अमृत का ठीक से प्रचार करें, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बोलते थे इस विश्व में इस पृथ्वी पर किसी चीज की कमी नहीं है, कमी किस चीज की है, सिर्फ कृष्ण भावना या भक्ति की। अगर हम भक्ति ठीक से सिखाएंगे जीवों को या हम ठीक से जीवन में पालन करेंगे, जैसे मैंने अपने पिछले प्रवचन में भी बताने का प्रयास करा था, इस पृथ्वी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिसके लिए हमारी सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, अरबों रुपया खर्च करती है कई बार। आजकल इस एनवायरमेंट को ही ठीक करने के लिए नहीं, पेड़ लगाओ, पहले पेड़ काट दिए, क्योंकि वो जीव नहीं, वो देखते नहीं है कि अभी परमात्मा की शक्ति है या परमात्मा इनमें भी है, वो नहीं देखते, उन्हें सिंपल पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ से काट के मैं ये बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, बस खूब मात्रा में पेड़ काट दिए गए, मतलब बॉटम लाइन या सिद्धांत यही रहता है कि मैं किसी तरह से मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे हो जाए, बस मुझे आनंद कैसे मिले, या अहम भोगी, मैं भोग करने वाला हूं, कृष्ण नहीं है भोगी, मैं नहीं जानता कृष्ण कौन है, मैं भोगी हूं बस। किसी भी तरह से मुझे सबसे अच्छा या सबसे अच्छा आनंद प्राप्त हो जाए, सबसे ज्यादा सुख प्राप्त हो जाए, मेरी लोग पूजा करें, बस ये चेतना के साथ सारे कार्य हो रहे हैं तो परेशानी हो रही है पूरे विश्व में। इतने सारे प्लान बनते हैं, सब कुछ होता है, सब बेकार हो जाते हैं। खूब सारी गाड़ियां बना दी, पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन को खत्म, पेड़ काट दिए क्योंकि शहर बड़े हो गए, पेड़ काटो, अब पॉल्यूशन खत्म करने के लिए पेड़ लगाओ, करोड़ों रुपया होल्डिंग्स लगाई जाती हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, दान किए जाते हैं। पहले कहते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो भक्त के जीवन में ये सारी बातें तो अपने आप आ जाती हैं, वो भगवान की शक्ति को देखते हैं सब तरफ, इसे कहते हैं कि भगवान के दर्शन करता है सब जगह। वो मंदिर में लाइट जल रही होगी तो भक्त अपने आप बंद कर देगा जाके, अगर बेकार में जल रही है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये शक्ति भगवान से आ रही है। इसीलिए भगवान कपिलदेव बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें परमात्मा रूप में भगवान को देखना चाहिए हर एक जीव में। उसके बाद भगवान कपिलदेव शुद्ध भक्त के लक्षण और शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि वो कैसे परमात्मा रूप में सबको देख, परमात्मा रूप में शुद्ध भक्त देखता है सब जगह, सब जीवों में परमात्मा रूप को, परमात्मा को जो शुद्ध भक्त है देखता है। इसमें प्रभुपाद जी कई बार, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है इस श्लोक के तात्पर्य में कि कई बार भक्त लोग भक्ति में करते करते, हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मायावाद दर्शन के बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिला या ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला, या जिन्होंने पढ़ा भी होगा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उन्हें समझ में आया कि नहीं, जीव अलग है और भगवान अलग है। प्रभुपाद जी विशेष करके उसमें समझाना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा है इस भारत में, हमने देखा है कितनी हमारी जो शक्ति है, जो हमारी समुचित या जो हमारी लिमिटेड शक्ति है इस जीवन में जो हमें मिली है, 50 साल या 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, वो शक्ति अगर हमारी कहीं और लग गई तो हमारा कितना समय नष्ट हो जाएगा। अगर हम नमो नारायण करके बोलने लग गए एक दूसरे को तो क्या होगा, हमारा सारा जीवन ऐसे बीत जाएगा। हम समझेंगे हम मुक्त है, मुक्त मानी ना, अपने आप को मुक्त मान लेंगे, लेकिन वो माया का एक और जाल है जीव को या तो इस भौतिक जगत में रखने के लिए या सिखाने के लिए। कोई भी अशुद्ध, जो पूर्ण शुद्ध नहीं है जीव, वो भगवत धाम नहीं जा सकता। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए और बड़े ध्यान पूर्वक अपने जो साधना है उसको करना चाहिए, वरना प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी मायावाद के बारे में बताने के लिए। हम सोचते हैं कहीं भी जाके सुन ले, वहां भगवत कथा हो रही है सुन ले, नहीं, प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं नहीं, हमें देखना है कौन बोल रहा है, कौन सी परंपरा से है, बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना है और बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। फिर तो प्रभुपाद जी विशेष उसमें कृपा कर रहे हैं, मायावाद का खंडन कर रहे हैं और उसके बाद समझा रहे हैं कि परमात्मा कैसे खुशबू की, जैसे खुशबू का उदाहरण देते हुए भगवान कपिल समझा रहे हैं कि जैसे खुशबू, एक फूल एक जगह होता है उसकी खुशबू सब जगह व्याप्त होती है, परमात्मा सब जीवों में व्याप्त है। क्यों ऐसा बता रहे हैं बार बार? सिर्फ यही समझाने के लिए कि हम सब भक्तों को, विशेषकर भक्तों को ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो श्लोक 35 से लेकर आज तक, मतलब माफ कीजिएगा, श्लोक संख्या 38 तक भगवान के बारे में बता रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है, वो जो जीव, जो हरेक जीव के हृदय में रहते हैं, वो विष्णु रूप है। वो बताते हैं कि कैसे विष्णु सब भगवान के, सब हृदय के रूप, सब जीवों में के हृदय में स्थापित रहते हैं। और इस श्लोक में प्रभुपाद या भगवान कपिलदेव समझा रहे हैं कि वे समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं, क्योंकि माता देवहूति का यह प्रश्न भी था कि कैसे भगवान काल के रूप में जीवों का सहार करते हैं या जीव कैसे वो कार्य करते हैं। तो यहां से भगवान कपिल देव ये समझाएंगे कि कैसे विष्णु जो काल के रूप में कार्य करते हैं, कैसे वे एक जीव का दूसरे जीव का भोजन होता है। जीवस्य कहते हैं ना जीव जीवस्य जीवनम, कैसे वे स्वयं भगवान ने ही यह व्यवस्था करी है कि कैसे एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो मुख्य रूप से हमें यह समझना है कि विष्णु जो है वो ही भोक्ता है। इस श्लोक में पिछले श्लोकों से हमें यह समझना चाहिए कि किस तरह से वे कपिल देव भगवान समझाना चाहते हैं कि विष्णु परमात्मा रूप में भगवान सब जीवों में है। वे कौन है? वो विष्णु है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे ही है सर्व कारण कारणम, वे ही है सब करने वाले। इस चेतना को समझते हुए हमें जीवों का बहुत अच्छे से सम्मान करना है, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करनी है, यथाशक्ति सेवा करनी है। तब हमारे में यह चेतना आएगी मैं दासों का दास हूं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बार बार अपने जीवन में समझाना चाहते थे। गोपी भरते हो पद कमले हो दास 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 अनुदास। देखिए वही शिक्षाएं जो कपिल देव भगवान देना चाहते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, और वही शिक्षाएं शैल प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाई। इसे कहते हैं आचार्य। और भगवान कपिल देव जी उस श्लोकों में जहां पे वो समझा रहे हैं कि कैसे आचार्य उपासना करनी चाहिए, आचार्य को हमें आचार्य उपासना मतलब उपासन, उनके साथ में बैठने का अर्थात उनके शिक्षाओं को जीवन में उतारना, सिर्फ साथ में बैठना नहीं। श्री प्रभुपाद जी जो समझाना हमें चाहते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया और जो उनके शिष्य करके दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं परंपरा। जो परंपरा से ज्ञान आ रहा है एज इट इज। भगवान कपिल देव ने कौन से युग में यह ज्ञान दिया था मुझे नहीं पता, कोई बताएगा? कोई भक्त भगवान कपिल देव और माता देवती का ये जो वार्ता हुई ये कौन से युग में हुई थी? सतयुग में। देखिए सतयुग चला गया, फिर द्वापर त्रेता, फिर द्वापर, अब कलयुग। शिक्षाएं एज इट इज आ रही हैं यथा रूप। इसीलिए बड़े ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए किससे मैं सुन रहा हूं। अगर हम टाइम समय का देखें, सतयुग कितने लाख साल, फिर उसके बाद त्रेता कितने लाख साल, फिर उसके बाद द्वापर कितने लाख साल, अब कलयुग इसके 5,500 साल बीत चुके हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वही शिक्षा में देना चाहते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हीं शिक्षाओं को श्रील भागवतम के तात्पर्य में हमें दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन बहुत जरूरी है, बड़े ध्यानपूर्वक। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जब दीक्षा देते हैं तो उनकी पहली ये अपने शिष्य से कहते हैं, या तो वो वाव लेते हैं, वाव क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप 16 माला का जप करेंगे और कम से कम 1 घंटा श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। अभी हम उनकी व्यास पूजा में गए थे तो उन्होंने फिर यही बात दोहराई। प्रभुपाद जी भी कई बार ये कहते थे, मेरे भक्तों में मुझे सबसे दुख की बात यह कि वो प्रचार पुस्तकों का वितरण तो बहुत करते हैं लेकिन पुस्तकें पढ़ते नहीं है खुद। पुस्तकों में क्या लिखा है, आप सब भक्त पढ़ते होंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि पुस्तकों में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ते, उसको समझते नहीं है। क्योंकि जब हम ठीक से उनका अध्ययन करेंगे तो हमारा प्रचार और अच्छे से होगा, तब हम परमात्मा रूप में भगवान को देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे कृपा के द्वारा, जो कृपा आ रही है उस कृपा की द्वारा वो दिव्य ज्ञान जो हृदय प्रकाशित होता है, फिर हम दर्शन कर पाएंगे, तब हमारा प्रचार बहुत अच्छे से होगा, तब हमें अहंकार नहीं आएगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि इन चीजों की इच्छा नहीं होगी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय, इन चीजों की इच्छा आएगी नहीं। फिर भगवान बचाएंगे, क्योंकि क्यों? क्योंकि हम आचार्य उपासना कर रहे हैं, हम आचार्य की लाइन में आके सेवकों के सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं, तब भगवान रक्षा करते हैं। नरसिंह देव भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। जो भगवान कपिल देव की शिक्षाएं, तब हमें समझ आएगी अरे भगवान, हे भगवान, इतने लाख साल पहले की जो शिक्षाएं हैं वो यथा रूप शैल प्रभुपाद जी ने हमें समझाई हैं। तब हमारा जब बहुत ध्यान पूर्वक होगा, क्योंकि जो चीज हमें इस वक्त मिली है, जो हमें मिली है, हम उसको उसकी वैल्यू समझ पाएंगे। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तब ये जीवन में उतार पाएंगे। ये गोलोकेर प्रेम धन है, ये वैकुंठर प्रेम धन नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इसमें से एक और थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें इंग्लिश में लिखा ब्रह्मा शिव और अन्य देवता भी उनके सेवक हैं। कई बार भक्त लोग इन देवी देवताओं का अनादर करने लग जाते हैं, नहीं 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 मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा, या मान लीजिए प्रचार करने जा रहे हैं तो उनके घर में काफी सारे देवी देवताओं के अगर चित्र हैं या वो हैं तो बोलने लग जाते हैं अनादर। मतलब मुख्यतः सिद्धांत यह समझना चाहिए कि अनादर करने लग जाते हैं, लेकिन भगवान कपिलदेव समझा रहे हैं कि हमें हर एक जीव का भी अनादर कर, जीव का भी आदर करना है। और अलग अलग जीवों का बता भी रहे हैं, ये पेड़ है, ये इनकी चेतना ऐसी है, जिसकी चेतना ऐसी है। फिर उसमें बता रहे हैं जो शुद्ध भक्त है, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वो सब जीवों, वो सब जगह परमात्मा को देखता है जीवों में। तो फिर ब्रह्मा और शिव जी के बारे में तो कहने ही क्या, वो तो भगवान के स्वयं सेवक है। उन्हें ब्रह्मा, उनको सेवा दी गई है ये भौतिक जगत में, और ब्रह्मा जी तो हमारे जो गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा है, उसके आदि गुरु है एक तरह से। तुम्हें अनादर नहीं करना, लेकिन उस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना है जो श्रील प्रभुपाद जी यहां समझाना चाहते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्य, कि कृष्ण भगवान है बस। ये बहुत अच्छे से हमें अपने मन बुद्धि चित्त चेतना सब में बैठा लेना चाहिए, लेकिन यह नहीं है कि हमें अनादर करना है किसी का। अनादर तो हम कुत्ते का भी नहीं करेंगे, फिर जीव ब्रह्मा जी का तो कहने ही क्या। भगवान ने भी भगवत गीता में देवी देवताओं को नहीं बोला गलत, भगवान ने क्या बोला, जो उनकी पूजा करते हैं उनको सर्वे सेवा मान के उनको बेवकूफ बोला है, मूर्ख। अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए कि कितना अमूल धन हमें मिला हुआ है, ये जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो हमें प्रभुपाद जी का संरक्षण मिला है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम निसंघ का जो संरक्षण मिला हुआ है, हरि नाम मिला है, परंपरा से गुरु मिले हैं, ये बहुत 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 अमूल्य धन है। और उसके ऊपर वृंदावन धाम में रहने को मिला है। श्री वृंदावन धाम की, यहां पे किए गए जप का हजारों गुना में लाभ मिलेगा, और यहां पे किए गए अपराध का उसका भी रिएक्शन मिलेगा। तो बड़े ध्यान पूर्वक अगर हम भगवान कपिलदेव की इन शिक्षाओं को अच्छे से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि परमात्मा रूप में हमें देखना है सब जगह, ये कोई आसान कार्य नहीं है। वो तो शुद्ध भक्त, भगवान कपिलदेव कहते हैं शुद्ध भक्त देखता है, और हम सब सभी साधना भक्ति में, हो सकता है आप में शुद्ध भक्त हो, मेरे जैसे व्यक्ति तो साधना भक्ति में। तो उसका सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दी है, त्रिनादपि सुनिचे न तरो रवि सहिष्णा अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अशील नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में बोलते हैं, सकल सम्मान करते हवे, अपराध फिर अपराध नहीं होंगे, सबका सम्मान करना है, क्योंकि एकमात्र वैष्णव अपराधी हमारी भक्ति को रोक सकता है, और इस भौतिक जगत में कोई शक्ति नहीं है जो भक्ति को रोक सके। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी आ जाए आपकी भक्ति को नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण रशिया में है, रशिया में उन भक्तों को जेल में बंद कर दिया गया था, आपको पता है, कम्युनिस्ट कंट्री था, वो लोग प्रचार करने का प्रयास करते थे, पुलिस उन्हें उठा के जेल में बंद कर देती थी। क्या करते थे भक्त लोग, ब्रेड को सूखा, ब्रेड को गीला करके उसके बीड्स बना के उस पर जप करते थे। बताइए, पूरी रशिया की शक्तिशाली सरकार भी भक्ति करने से नहीं रोक सकी उनको, और अब क्या हो रहा है, रशिया में हजारों भक्त हैं। तो एकमात्र वैष्णव अपराध हमारी भक्ति को रोकता है। तो इस बात सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक हम इस स्थिति में नहीं आएंगे जो भगवान कपिलदेव समझाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भगवान कपिलदेव माता देवहूति को निमित्त बना के हमें यह संदेश देना चाहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाओं को बहुत अच्छे समझाया। षड गोस्वामी ने वो क्या श्लोक है, नाना शास्त्र विचार नेक निपुणों षड धर्म संस्थापकों, नाना शास्त्रों को पढ़ के षड धर्म जो सत धर्म है उसको संस्थापित करा है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कृपा के कारण इन तात्पर्यों को लिखा है। रात को 1 बजे से 4 बजे तक 5 बजे तक लिखते थे, किसके लिए, हम जैसे जीवों के लिए। तो बड़े ध्यान पूर्वक उनकी पुस्तकों को पढ़ना है, बड़े ध्यान पूर्वक जो उन्होंने हमें साधना जो साधना भक्ति दी है कि मंगल आरती जप उसके बाद गुरु पूजा, गुरु पूजा में प्रार्थना करनी है प्रभुपाद से, हे प्रभुपाद जी मुझे शक्ति दीजिए आपके द्वारा जो गुरु मुझे मिला है उसके गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त तय कर रही है कि मैं उसके जो उनके द्वारा मुझे संदेश मिला है मैं उसको चित्त में उतार सकूं, हृदय में पूरी शक्ति के साथ उसको अपने जीवन में उतार सकूं, तब हम देखेंगे कि हमारे मन में शांति आएगी, तब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ये अवस्था आएगी, तब हमें दूसरे के प्रति जीवों के प्रति दया उत्पन्न होगी। अभी तो हम प्रचार करते हैं साधना के लिए, अपनी पवित्रता के लिए, फिर श्रील प्रभुपाद जी जैसी शुद्ध भक्त जो प्रचार करते हैं दूसरे जीवों की शुद्धता के लिए, वो स्थिति आएगी। क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ में सब शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, सब हम सब। एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी से बोल रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू डू अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस, बहुत मुश्किल है कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। प्रभुपाद जी क्या मुश्किल है, व्हाट इज द डिफिकल्टी, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, जस्ट डू इट, करो प्रयास करो। तो हमें इस तरह से प्रयास करना है, प्रभुपाद जी के शरण में रहते हुए और भगवान कपिलदेव की शिक्षाओं को इस तरह से प्रभुपाद जी के शरण में रहते हुए समझते हुए भक्ति का प्रयास करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी भक्त का कोई कमेंट या कोई प्रश्न तो हम और चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, माता जी का बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है, मैं सोच रहा था कोई ना कोई व्यक्ति यह प्रश्न जरूर पूछेगा। जैसे अभी हमने बताया, हमने कोशिश करी कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी सब हम ये समझते हैं और बार बार हमें बताया जाता है कि वो सब उनके भक्त हैं। और तो माता जी का प्रश्न है, जैसे कभी ब्रह्मा जी का और शिव जी का प्रसाद मिलता है तो हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। जस्ट वेट प्रभु जी, लेट मी डिस्कस विद माता जी इस क्वेश्चन एंड देन वी विल टेक योर क्वेश्चन प्लीज। विशेषकर जो भक्त प्रचार में जाते हैं उनके साथ ये काफी दुविधा में पड़ जाते हैं। जिन भक्तों को अगर बात करनी है तो उनसे प्रार्थना, कृपया माफ कीजिएगा बारिश आ रही है बाहर तो थोड़ा धीमे बात कीजिए। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, अगर कोई मेरे से त्रुटि हो तो कोई भक्त उसको ठीक कर सकता है। जब हमें किस तरह का प्रसाद मिलता है और कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति हमें प्रसाद दे रहा है उसे मान लीजिए ईर्ष्या नहीं है, या वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के प्रति या भक्तों के प्रति उसे ईर्ष्या नहीं है और वो मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन कहते हैं ना, जैसे एक उसके उसमें दे रहे, नहीं नहीं मैं ये लीजिए शिव जी का बत, मैं केदारनाथ होके आया या मैं ऐसे होके आया, ये लीजिए। तो हमें भगवान शिव से ही प्रार्थना करके कि भगवान आप भी भक्त हैं और मैं भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और आप तो शुद्ध भक्त हैं, मैं ये प्रसाद ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं सिर्फ क्योंकि जो व्यक्ति मुझे प्रसाद दे रहा है वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, आप उसको सहायता कीजिए क्योंकि मैं आपका प्रसाद, तो मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि आप उसकी सहायता कीजिए। इस चेतना में प्रसाद लेंगे तो इसमें कोई मतलब गलती नहीं है, लेकिन प्रार्थना करते हुए जानते हुए और उस जीव जो जीव हमें प्रसाद दे रहा है उसकी कृष्ण भावना अमृत में और मतलब बढ़ोतरी और वो एडवांस करे इस चेत उससे। तब भगवान शिव हमसे भी खुश होंगे और हमें और भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। इस चेतना में ले सकते हैं आप उनकी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, जिस देवी देवता का प्रसाद दे रहे हैं उसको। और बाकी कोई आपको माफ कीजिएगा, इस कलयुग में तो लोग काली को मीट ऑफर करके अगर आपको मीट देंगे वो तो कोई देगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जानता है कि ये कृष्ण भक्त ये नहीं खाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको किसका प्रसाद मिलेगा, हनुमान जी का या शिव जी का, इन्हीं का प्रसाद मिलेगा। और इनको कोई मांसाहार तो चढ़ाता नहीं। तो एक्सट्रीम केस में भगवान शिव का प्रसाद मिल जाएगा या हनुमान जी का प्रसाद मिल जाएगा। कोई और भक्त इस पर टिप्पणी करना चाहेगा? एक मिनट, बाकी अभी आप पूछ सकते हैं किसी और सीनियर वैष्णव से। और अगर आपको इसके बारे में पता हो, कई बार भक्त लोग जानते हैं लेकिन फिर भी औरों के पवित्रता के लिए पूछते हैं, तो माता जी को हो सकता है इसका उत्तर पता हो लेकिन वो औरों की पवित्रता के लिए पूछ रहे हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे आप बता सकते हैं बाद में। यस प्रभु जी, हाउ कैन आई सर्व यू? प्रभु जी ने प्रश्न भी दिया, प्रश्न भी पूछा और उत्तर भी दे दिया। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नो यू डोंट टेक ओनली तुलसी, बिकॉज ओनली विष्णु कैन बी सेटिस्फाइड बाय तुलसी ओनली। यू शुड टेक फुल प्रसाद, देन यू विल बी हेल्दी एंड यू कैन डू योर चैंटिंग नाइसली। ओके, फर्स्ट यू शुड ऑफर वॉट एवर यू आर हैविंग, वॉट एवर यू आर गोइंग टू ईट टू लॉर्ड कृष्णा बाय पुटिंग तुलसी ऑन दैट। दिस इज लाइक ए डिफरेंट, माफ कीजिएगा मैं अंग्रेजी में बात करने लगे उनसे। प्रभु जी का प्रश्न था कि भगवान विष्णु ही सर्वे सर्वा है या कृष्ण, तो इसमें प्रभुपाद जी ने देखिए लिखा एकला ईश्वर कृष्ण। विष्णु जो है भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, तो कृष्ण है जो ईश्वर, एकल ईश्वर, तो उनकी हमें विराट रूप नहीं, ये जो हमारे मुरली वादक हैं वो है विराट रूप नहीं है, ये भगवान कृष्ण जो राधा श्याम सुंदर हैं यही है सब कुछ, इन्हीं से सब आ रहे हैं। तो आपको इनकी पूजा में लगना है। इससे पहले आपको गौर नेता की सेवा करके उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना है। उससे पहले आपको श्रील प्रभुपाद जी की शरण में आना है। उससे पहले आपको किसी शुद्ध या गुरु की शरण में आना है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको एक शुद्ध भक्त या भगवान का शुद्ध भक्त आपके आपको आप शरण मिले, उसके बाद ये सारा लैडर शुरू होगा। ठीक है, एक मिनट प्रभु जी, श्रीमद भागवतम की जय। आप लोग प्रसाद के लिए जा सकते हैं, प्रभु जी से मैं अपना पर्सनल या उससे किसी का और प्रश्न है तो यहां पर आ सकते हैं, हम वो कर सकते हैं चर्चा।